तो शशि बहन जी हम सबके सामने उपस्थित है। बहन जी स्पोर्ट्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, पर साथ साथ पांडव भवन की भी विशेष निमित्त है, जो पांडव भवन के भी व्यवहार को है ना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उनको बहुत सुचारू रूप से आप चलाते हैं। और साथ साथ बाबा मिलन के अंदर विशेष बहुत भारी ड्यूटी आप बजाते हैं। बहन जी उस समय बहुत बिजी भी रहती है, खास सबको स्थान देने की ड्यूटी संभालते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ी भारी बात होती है, उस समय किसको कहाँ स्थान देना, मैं समझती हूँ बहुत उस समय इम्पोर्टेंट काम रहता है। और फिर बाबा जब आते हैं तो भी स्टेज आप संभालते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बहन जी अभी अपने आशीर्वचन बताएंगे और उसके बाद सबको टोली भी देंगे। ओम शांति,
शशि बहन जी। ओम शांति मधुबन तपस्वी भूमि, वरदानी भूमि, बाप दादा के चरित्र भूमि, प्यारी प्यारी दादियों की कर्म भूमि के साथ साथ हम बच्चों के लिए पालना की भूमि। ऐसी भूमि पर कदम रखने से ही स्वतः ही वरदान प्राप्त होते हैं। साकार बाबा मम्मा दादियों ने इस ऐसी तपस्वी भूमि पर बैठ करके इतने सुंदर बीजारोपण किया है और उस बीजारोपण का रिजल्ट आज हम देश विदेश में देख रहे हैं। बाबा जब यहाँ बैठते थे तो बाबा हमेशा कहते थे कि एक दिन आएगा यहाँ बाबा के घर में हजारों लाखों बच्चे आएंगे। फिर बाबा ने मुरली में कह दिया कि एक दिन आएगा कि माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन लग जाएगी। एक दिन आएगा विश्व के कोने कोने में जो बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं वे भी प्रत्यक्ष होंगे और पूरे विश्व के अंदर ये ज्ञान का दीप जलता ही रहेगा। उस समय ना दादियों ने सोचा ना किसी ने सोचा कि बाबा जो कह रहे हैं इसका कितना गहरा राज है। और साथ साथ गुजरात की धरनी तो इतनी फर्टाइल धरनी है, इतनी उपजाऊ धरनी है, जिसको साकार बाबा ने अपने संकल्पों से ही उसको सींचा। मुझे याद आता है जब बाबा अहमदाबाद के अंदर सेवा शुरू हुई तो बाबा कहते थे ये गुजरात में और सेवा बढ़े, और वहां पर बाबा कहते थे गुजरात क्या है, ये मधुबन का दूसरा कमरा। अहमदाबाद को तो कहते थे लेकिन अहमदाबाद मीन्स गुजरात। अभी दूसरे कमरे में आप सब भट्टी करने के लिए आए हैं तो बैठे तो मधुबन में है ना, ऐसा तो नहीं कि मधुबन में नहीं है, बैठे मधुबन में हैं, लेकिन भट्टी जब करते हैं जहां बैठे होते हैं वहां पर कितनी भी करें लेकिन दूसरे स्थान पर जब भट्टी करते हैं तो उसका महत्व, उसकी प्राप्ति, उसका अनुभव, उसका अभ्यास जो है वो निराला, प्यारा और बहुत अनुभवी होता है। मुझे ये भी याद आता है साकार बाबा खुद भी बैठ करके घंटों घंटों दिन के समय रात के समय तपस्या में बैठ करके सारे विश्व के अंदर साकाश के वाइब्रेशन फैलाते थे। बाबा के कमरे की हम इतनी कहानियां सुनते हैं और खुद भी हम बाबा के टाइम पर आए बाबा के साथ कमरे में बैठ करके बहुत बाबा के साथ बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी प्राप्त किए, क्योंकि जब हमारा यहाँ मधुबन में आना हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी दादियों के साथ आते हैं तो भाग्य बिना पुरुषार्थ के मिल जाता है। और हम जब ज्ञान में आए तो भी ऐसा ही था कि हमारे सामने बड़ी दादियां थी, मनोहर दादी जी थी और सारी सीनियर दादियां उस स्थान पर आए थे। साकार बाबा भी आए, मम्मा भी आई, करनाल में साकार बाबा भी आए थे, मम्मा भी आई थी और सब सीनियर दादियां भी वहां पर आई। उस समय तो हम दादियों को देखते थे, देखते हुए प्रेरणा मिलती थी, पर ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा अपनी गोदी में बिठा देंगे और दादियां हमें अपनी पालना देंगी, हम दादियों के अंग संग रहेंगे, ऐसा मौका कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। तो हमको लगता है कि जो बाबा ने हम बच्चों के लिए किया है या दादियों ने हम बच्चों के लिए किया है, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो इसी प्रकार से गुजरात के भाई बहनों को जब मैं देखती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कितने भाग्यशाली हैं। साकार बाबा के संकल्पों की उत्पत्ति है, प्यारी प्यारी दादी जी की बातें याद आती हैं। दादी जी को जब भी यहाँ कोई महान कार्य होता था, बड़ा कार्य होता था, दादी कहती कार्य हुआ ही पड़ा है। क्यों? सरला दीदी को फोन करो, ये सारा गुजरात आ ही जाना, वो ये सारा आ ही जाता था। चाहे वो भट्टियों का शुभारंभ हुआ, चाहे बड़े मेले हुए, चाहे कोई विशाल प्रोग्राम हुआ, तो गुजरात ऐसा स्थान है जिसकी साकार बाबा भी महिमा करते, दादियों ने इस पे अधिकार रखा और आज भी हम अधिकार रखते हैं और हमें भी बहुत स्नेह है। जब भी कोई कार्य होता है तो हम कहते गुजरात है, फोन करो, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़े सहयोग की निशानी, बहुत बड़े प्यार की निशानी है। तो मैं जब बाबा के ऐसे बच्चों को देखती हूँ तो खुशी होती है कि साकार बाबा ने कैसे बच्चों को स्नेह के सूत्र में ऐसा बांध दिया है, वो सूत्र अटूट है और कभी टूट नहीं सकता है। और इस सूत्र के अंदर जो माला के मन के डाल दिए हैं, वो माला के मनकों की इतनी सुंदर शोभा लगती हैं। बाबा कहते कई प्रकार की माला है, आप तो सब बाबा की गले की माला हो ना, बाबा कहते गले की माला है। कई बार बाबा के बच्चे पूछते हैं, एक माला तो तैयार हो गई है, दूसरी तैयार हो रही है, तो बाबा ने कहा सब आ सकते हैं लेकिन तैयार आपको होना है, बाबा को नहीं होना है, बाबा तो हो गए, तैयार आपको होना है। बाबा ने कहा जो माला के मन के बनना चाहते हैं, तैयार होते जाएं, बाबा और लड़ियां लगाते जाएंगे, और लड़ियां लगाते जाएंगे, जितनी ज्यादा लड़ियां होती हैं वो कितना सुंदर लगता, एक लड़ी वाला एक मोतियों वाला उसका महत्व अलग है, लेकिन वो जो लड़ियों वाला होता है कितना दूर से अट्रैक्ट करता है। तो बाबा भी क्या करते हैं, सब बच्चों की लड़ियां लगा करके इतनी सुंदर माला बना के रखी हैं, वो माला सारे विश्व के अंदर चमकती रहती है, उसकी रोशनी सारे विश्व में पहुंच रही है। तो आप सभी माला के अनेक लड़ियों के मोती हो, लेकिन बाबा ने कहा ना कि वो मोती चमकते रहते हैं लेकिन कभी कभी वो मोती की लाइट डिम हो जाती, खत्म नहीं होती है लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। तो जब लाइट कम हो जाती है, उस लाइट को फिर से उसी स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी युक्ति बताई। पहली युक्ति बाबा ने कहा है कि बच्चे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, स्वयं को अंदर ही अंदर चेक करो। दूसरी युक्ति बाबा ने कहा कि बाबा से प्यार से बातें करो। तीसरी युक्ति बाबा ने कही कि अमृत वेले बाबा के सामने बैठ जाओ और बाबा के द्वारा जो लाइट और माइट मिल रही है उस लाइट और माइट के द्वारा ऑटोमेटिकली वो चमकने शुरू हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि हमें जो क्या करना है, सदा इस बात की खुशी में रहना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। आपने मुरली के अंदर सुना होगा, बाबा कहते हैं मैं बच्चों से ही मिलता, बच्चों के लिए आता हूँ, बच्चों से ही बात करता हूँ, बाहर वालों से मैं नहीं मिलता हूँ। मुझे याद आता है कि हम जब साकार बाबा के सामने थे, उस समय एक परिवार आया और बाबा को कहा, मैसेज दिया कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। बाबा ने कहा उनको कह दो यहाँ गुरु कोई है नहीं, कोई गुरु नहीं मिलते हैं। फिर कहा नहीं, हमको तो दर्शन करना ही है। बाबा ने कहा दर्शन की तो यहाँ बात ही नहीं है। फिर उनको था कि हम बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, तो बाबा ने कहा उनको कहो कि आप पहले ये कोर्स करो और कोर्स में ये रियलाइज करो कि किससे मिलने जा रहे हैं, अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। और वो इतने लवली, इतने इंटरेस्टेड थे, तो उस समय मैं यहाँ पर थी तो मेरे को कहा गया कि आप इनको अटेंड करो। तो उस समय देखा कि बाबा ने कहा कि ये रियलाइजेशन हो कि हम किससे मिल रहे हैं। जैसे बाबा को खुशी होती है बच्चों को देखकर, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई इंटेलिजेंट भी नहीं है। बाबा ने कहा अगर उसने ये कहा मेरा बाबा, बस मेरा बाबा, बाबा शब्द कहने वाला ही ना जाने कितना बड़ा भाग्यशाली। बाबा ने कहा ये VVIP है, दुनिया उसको कहती है कुछ भी नहीं है, साधारण है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ समझता नहीं, और बाबा कहते हैं ये VVIP हैं। बाबा की अनेक स्टोरीज हैं। बाबा को क्या करते थे, जिसको कोई नहीं समझता था बाबा उसको क्या करते थे, अपने पास ड्यूटी लगा देते थे। हमें याद है कि निरंजना बहन को भी याद होगा कि साकार में बाबा ने अर्जुन भाई, जो मेंटली इतना डेवलप नहीं था, बाबा ने इसको गेट पर अपना ही सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा था। और वो सिक्योरिटी गार्ड इतना क्लेवर हो गया, इतना क्लेवर हो गया, वो हम नहीं उतने पिकअप कर सके जितना वो कर गया। और उसको बाबा के आने पर पहले वो सल्यूट करता था। फिर दूसरा, बाबा ने उसको ड्यूटी दी थी कोई भी मैसेज उसको देना है, अगर हमें कोई मैसेज देंगे वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे अच्छा वो अभी मिला नहीं, बाद में दे देंगे। उसको देते थे, वो किसी भी कोने में ढूंढ करके उसको ले आएगा, वो मैसेज चाहे कहीं भी हो उसके पास पहुंचाएगा। फिर इतना एक्यूरेट ड्यूटी उसकी हो गई थी कि बाबा को देखता था, बाबा क्या करते हैं, उसका माइंड इतना डेवलप हो गया था कि मुरली पॉइंट्स भी याद कर लेता था। लेकिन एक छोटी सी बात सुनाती हंसी की, तो बाबा ने कहा उसको गिनती सिखाई थी 1 से 10 तक, वो क्या करता था गिनती में एक शब्द खा जाता था। तो बाबा ने कहा कि जो इसको गिनती 1 से 10 एक्यूरेट सिखाएगा उसको बाबा चांदी का गिलास इनाम में देंगे। उस समय चांदी का गिलास तो बड़ी बात होती थी। तो जब भी उसको गिनती कोई भी सिखाता था, फिर वो गिनती करते एक शब्द उसने जरूर खत्म कर देना है। फिर दीदी ने उसको कहा अर्जुन तू हर बार यही बात करता है, तू हर बार एक शब्द क्यों खत्म कर देता है। कहता क्यों, वो चांदी का गिलास क्यों ले, चांदी का गिलास तो मुझे चाहिए, उसको क्यों देना है, इसलिए मैं वो शब्द खा जाता हूँ। और एक कमाल है ऐसे व्यक्ति की, तो कहने का भाव है कि बाबा ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, बाबा उसको इतना प्यार करते थे, बाबा उसको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते थे, योग में एक्यूरेट, ड्यूटी में एक्यूरेट, जो ऐसा सुस्त व्यक्ति वो एकदम एक्यूरेट कर दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि मेरा हर बच्चा बाबा को लाडला है, बाबा का प्रिय है, बाबा हर बच्चे के गुणों की माला सिमरन करते हैं। और हम बच्चे क्या करते हैं, योग में बैठेंगे बाबा से उलहने करते रहते, बाबा आप देर से क्यों आए, हमको देर से क्यों बुलाया, हमने आपको क्यों नहीं देखा, औरों ने देखा है। बाबा ने इतना अच्छा राज बता दिया है कि जो देर से आए वो और भाग्यशाली। क्यों, मुझे मुरली की एक पॉइंट याद आती है, बाबा ने कहा जो लास्ट में आए हैं उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, याद है, लेकिन मिलेंगे किसको, किसको मिलेंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे ना 25%। मानो आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, उस पर लिखा है कंसेशन, 50% कंसेशन, आप पढ़ के खुश हो गए कंसेशन है। अरे दुकान में जाओगे चीज खरीदोगे तब तो कंसेशन मिलेगा, चीज खरीदा नहीं बोर्ड पढ़ के खुश हो गए 50% कंसेशन है, तो ये पॉइंट सुन के खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा 25% कंसेशन है, अरे कंसेशन उसको मिलेगा जो लगन से पुरुषार्थ करेगा, जो बाबा के स्नेह में खोया रहेगा, जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, जो बाबा को अपना हाथ बाबा के हाथ में देगा, जो बाबा से उलहने नहीं देगा। अभी योग में बैठते पूरा टाइम उलहने ही देते रहते, और दूसरी बात क्या करते हैं, हम योग कैसे लगाएं, फिर एक एक से पूछते रहते हैं हम योग का चार्ट कैसे लिखें, वो लिखने में बिजी हो जाते। अरे बाबा जो ऊपर से दे रहा है वो कहाँ गया। तो ये इसी बात से ही आप सबको इतना बड़ा भाग्य मिला है कि मधुबन में योग भट्टी करने का, और योग भट्टी में ऐसे अनुभव करने हैं, बाबा की गोदी में बैठो, बाबा के स्नेह के झूलों में बैठो, और बाबा का हाथ पकड़ के चलो, और बाबा से सब कुछ जितना प्राप्त करने करो। ये मधुबन भूमि में बाबा वरदाता महादानी के रूप में लुटा रहे हैं। हम क्या करते हैं, देखेंगे इधर कोई बात आ गई, इधर देख लिया, उधर देख लिया, तो उससे क्या होता है, जो वरदान मिल रहा है वो वरदान फिर हमारे से छूट जाता है, फिर उसके लिए हम कहते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए जो भट्टी करने के लिए बाबा ने बुलाया, और हमारी दादियों ने ये प्रोग्राम बनाया, और साथ में मुन्नी बहन मोहिनी बहन ने आप सबको छुट्टी दी, मैं तो उनको बहुत थैंक्स देती हूँ, आपको इतना अच्छा चांस दे दिया कि जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी यहाँ भट्टी का आपको मौका मिल गया। कईयों की तो लंबी लिस्ट लगी हुई है, उनको तो मौका मिला नहीं, और आपको तो मौका मिल गया है। तो इस मधुबन की भट्टी का बहुत बड़ा महत्व है, और जिस स्थान पर आप भट्टी कर रहे हैं मालूम है इस स्थान का क्या महत्व है। ये वो स्थान है, साकार मम्मा बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थी, और साकार मम्मा बाबा दादियां यहां पर आकर के कभी कभी योग तपस्या करते थे। साकार बाबा के टाइम सीनियर भाई बहनों की यहां पर मीटिंग्स भी चलती थी, जिसको बाबा कहते थे मीटिंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सेमिनार। और कभी कभी साकार बाबा इस पहाड़ी पर आकर के विष्णु की तरह ऐसे हाथ किया हुआ लेटे हुए होते थे। ये वो पहाड़ी है, और यहाँ पर फिर अंगूर की बेल भी बड़ी हुई। फिर नाइन्थ जब बाबा अव्यक्त हुए, तो पहले अव्यक्त बाबा बाबा के कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आना शुरू किया, फिर बीच बीच में ऐसा हुआ कि एक दो बार आंगन में आए, लेकिन वो जगह कम होने पड़ी, तो 1975 में ये हॉल इस पहाड़ी पर बनाया गया। 1976 से अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि इसी हॉल में हुई। अव्यक्त बाप दादा यहाँ होते थे और हम सब बच्चे यहाँ बैठे रहते थे, तो ये हॉल जो है साकार बाबा की तपस्वी भूमि है, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा वरदानी भूमि है। तो इस हॉल में जो आपको तपस्या करने का मौका मिल रहा है, तो ये पक्का करना है हम बाबा से स्नेह से मिलेंगे, फरिश्ता बनेंगे, मन में कोई भी प्रकार के उलहने नहीं और कोई भी संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा। देखना कैसे बाबा साकार में आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। मुझे याद आता है जब बाबा साकार में थे उस समय कभी कभी योग कराते, बाबा बीच में बच्चों के सामने आ जाते। तो इस भट्टी में भी बाबा आपके सामने आएंगे, फिर ध्यान देना कभी ऐसा ना हो कि आंख बंद कर लेना, सुस्ती आ जाए और बाबा खड़े हैं, बाबा देख रहे हैं और उस समय बाबा उड़ा रहे हैं, तो बाबा कहेंगे उड़ते रहो, अनुभव करो, झूलों में झूलो। और साथ साथ ऐसी जब भट्टी होती है, चाहे हमारी एडवांस पार्टी में दादियां गई हैं, वो अपना भविष्य का कार्य कर रहे हैं, बाबा ने ये भी कहा था कि एडवांस पार्टी के हमारे जो महान रतन हैं, वो भी बीच बीच में मधुबन में चक्कर लगाते हैं। प्यारी दादी को बहुत अच्छा लगता था जब यहाँ पर भट्टी होती थी, तो एडवांस पार्टी के दादी दीदी मम्मा बाबा सब आपको देखने आएंगे और आप देखना कैसे आपके सामने खड़े हैं। तो ऐसा मौका यहाँ पर ही मिलता है, तो आप सभी का बाप दादा दादियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत भी है, मुबारक भी है, और उसके साथ साथ हमारी शुभकामना है कि बाबा के साथ के बाबा की गोदी में बैठ के बाबा का हाथ पकड़ करके अनेक अनुभवों से भरपूर होंगे और वरदानों से आपके ऊपर मीठी मीठी फुहार वर्षा होती रहेगी और बहुत कुछ प्राप्त करना है और भरपूर रहना है। अच्छा, ओम शांति। अभी आप सबको प्यारे बाबा और दादियों की तरफ से मुख मीठा कराएंगे, बहुत वातावरण पीसफुल होता है। लेकिन दूसरी बात, बाबा कहते आवास में रहते हुए भी आवास से परे रहना है, उसका अनुभव भी यही करना होता है, क्योंकि जब शांतिवन में शिविर होता है ना, दिन के टाइम पर चारों धाम की यात्रा करने के लिए वो ग्रुप्स आते हैं, नए नए होते हैं, उनका भोजन भी ऊपर होता है, वो आकर के आवाज करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आवाज होती है, लेकिन आपको उस आवाज पे ध्यान नहीं देना है, आप तो फरिश्ते बनके बाबा की याद में ही भोजन करेंगे। फिर जब चारों धाम की यात्रा करते हैं ना, उस समय आप जब आंगन में बैठेंगे तो कई भाई बहने आपसे बात करने लग जाते, जितना कोशिश कर सको बात कम करने का। और फिर साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे शांति स्तंभ पर योग चल रहा होता है, योग के टाइम पर ही कई सेवाधारी माता या भाई, उनको पता नहीं पड़ता, योग के बीच में शांति स्तंभ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, तो उस समय अगर आप वहां पर हैं तो आप उस समय चक्कर नहीं लगाओ, योग पूरा होता है 5 बजे के बाद शांति स्तंभ के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। वैसे भी आपकी दिनचर्या में चारों धाम की यात्रा का है और यात्रा के समय भी बिल्कुल साइलेंस में आवाज नहीं करने का। और जूते चप्पल जब पहन के रखते हैं ना, तो आंगन में चप्पल उतार के नहीं घूमना है, बाबा के पास जाते हैं कमरे में, उसमें बाहर उतारे लाइन में रखें, फिर पहन के रखें, क्योंकि पांव गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर बाबा के कमरे की चद्दर पे भी मिट्टी लग जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अभी ओम शांति करते हैं 2 मिनट बाबा की याद में।